संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में त्रिवर्धमान महान दिन बिचरे हमारे ध्यान। समय सार परमागम की 74वीं गाथा में ये बताया है कि 73वीं गाथा में बताई गई विधि के अनुसार जब यह आत्मा ये जान लेता है कि जीव के साथ बंधे हुए ये आश्रव भाव आत्मा से विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, आत्मा को कष्ट देने वाले हैं, तो वह उनसे निवृत्त हो जाता है। और ज्यों ज्यों निवृत्त होता है त्यों त्यों विज्ञान घन स्वभाव से परिणमित होता जाता है, और ज्यों ज्यों विज्ञान घन स्वभाव से परिणमित होता जाता है त्यों त्यों वह आश्रमों से निवृत्त होता जाता है। ऐसा ही एक छंद आचार्य पूज्यपाद का भी आता है, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमं। बिल्कुल जो ये पंक्ति है ना अमृतचंद की, बिल्कुल समझ लो इसी का अनुवाद है इसका। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस छंद का वो अनुवाद है। ऐसा भी कह सकते हैं कि ये छंद उस पंक्ति का अनुवाद है छाबड़ा जी, क्योंकि पूज्यपाद 6वीं शताब्दी के हैं और ये 10वीं शताब्दी के, दोनों में 400 साल का अंतर है। वो छंद जो लिखा गया है वो 400 साल पहले लिखा गया, ये टीका लिखी गई ये 400 साल बाद में लिखी गई, इसलिए हम ये मानेंगे कि उसका उसकी छाया इसमें है कि ज्यो ज्यो उत्तम तत्व की संवित्ति होती है। उत्तम तत्व माने अपना भगवान आत्मा। देखो हर भाषा में अपने आत्मा को सर्वश्रेष्ठ माना है, भाषा की प्रकृति में आई इज ऑलवेज कैपिटल है ना, वहां अंग्रेजी में भी है ना आई हमेशा कैपिटल में लिखी जाएगी, बीच में आए शुरू में आए अंत में आए, ऐसा नहीं कि शुरू का अक्षर कैपिटल में लिखे में बाद में ऐसा लिखे है ना। और संस्कृत भाषा में कहते हैं तीन पुरुष होते हैं ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, आप समझते हैं ना। तो मैं हम ये उत्तम पुरुष है ना, और तुम ये मध्यम, और बे अधम, अन्य पुरुष का अधम कहना अच्छा नहीं लगा इसलिए उन्हें अन्य में डाला है ना, अन्य। तो संस्कृत व्याकरण से इंग्लिश व्याकरण से सबसे ये सिद्ध होता है कि मैं मेरे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हूं, उसको बोलते उत्तम तत्व लिखा ना। और यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्व उत्तमम, उत्तम तत्व की संवित्ति जैसे जैसे होती है। अपने को ज्ञान तो एक साथ हो जाता है ना, ये बात सही है, लेकिन फिर भी उस ज्ञान में गहराई आती है, उसमें अपनापन में दृढ़ता आती है, उसमें अपनापन का विकास होता है ख्याल में है ना। वो उसके चौथे गुण स्थान से लेकर के और 13वें गुण स्थान तक की वो सीढ़ियां अपने शास्त्रों में बताई है ना, वो सब उसकी विरोधी जो कसाएं हैं वो अनंतानंदी जाती है, सत्ता में पड़ी हो तो संक्रमित होके अप्रत्याखानावरण प्रत्याखानावरण होके निकल जाती है, जो भी हो धीरे धीरे होता है ना वो प्रक्रिया, वो इसलिए ऐसा ऐसा शब्द डाला है। तथा तथा समायाति तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि, जो सुलभ पांच इंद्री के विषय है वे भी अच्छे नहीं लगते। सुलभ का मतलब क्या है कि एक तो पुण्य का योग नहीं हो तो पांच इंद्रियों के विषयों की उपलब्धि जो इस लोक में इतनी आसान भी नहीं है, जिनको हो गई है ना उन्हें इसका अंदाजा नहीं है। झुपड़पट्टी में जाके देखो, और जिन लोगों को दो जून रोटी की व्यवस्था नहीं है, पांच दिन के कोई विषय सुलभ नहीं है ना, तब मालूम पड़ेगा कि कितने दुर्लभ हैं। तो कहते हैं कि दुर्लभ विषय में भी उनकी आसक्ति होती है, लेकिन यदि आत्म तत्व की संवित्ति हो तो सारे पांच इंद्रियों के विषय सामने पड़े हों तो भी वे रुचते नहीं तथा न रोचनते विषया सुलभा। अभी सुमित प्रकाश जी बता रहे थे ना कि अभी हम टीवी देख रहे हों और लोग के कार्यक्रम देख रहे हों तो वहां पर नींद आ जाती, नहीं आती है, सतर्क रहते हैं, और यहां पर बिल्कुल गर्दन ढली रहती है। ऐसे भी लोग इस जगत में हैं गुरुदेव के प्रताप से कि जो इसमें एकदम जागृत रहते हैं और कोई भी फिल्म उन्होंने बीच में बिना सोए नहीं देखी होगी, देखना पड़ी होगी, जो लोगों के साथ जाना पड़ा होगा ना, तो उसके बीच में उन्हें नींद अवश्य आ गई होगी, होता है ना ऐसा है? और यहां कभी भी उनके बिल्कुल भी उनकी जागृति की कोई कमी देखने में नहीं आती है। हाँ, अधिकांश लोग वैसे हैं जैसे सुमित प्रकाश जी ने बताए, लेकिन ऐसे लोगों से भी जगत खाली नहीं है, बीज नष्ट नहीं हुआ है, मेरा मतलब यह है ना, बीज राख फल भोग भी है क्या नहीं है, कि इसमें अत्यंत जागृत अवस्था रहते हैं तो उसे सुलभ विषय भी अच्छे नहीं लगते हैं। और अब उल्टी बात करते हैं कि ज्यों ज्यों सुलभ विषय अच्छे नहीं लगते हैं तो त्यों त्यों उत्तम तत्व की प्रीति और बढ़ती है, संवित्ति और बढ़ती है, दोनों तरफ से कार्य कारण संबंध है। कभी ये कार्य बनता है, कभी वो कार्य बनता है, कभी वो कार्य बनता है। इसको मैं कहता हूं ना कि लोग कहते हैं देखो सब सत्यानाश कर दिया, चौराहे चौराहे पर नंगी औरतों की फोटो लगा दिए हैं, घर घर में टीवी घुस गया है, हैं? इसे सबको बिगाड़ के रख दिया है, ये पक्ष है ना, ये पक्ष है, और जिसको हम लोग बहुत गहराई से अनुभव करते हैं। लेकिन एक उल्टी बात भी है, और वो ये है कि ये क्यों लग गई, ये घर में आया कैसे टीवी, ये गंदे चित्र चौराहों पर लग कैसे गए, पहले हमारा मन बिगड़ा है तब ये लगे हैं। चौराहों भी छोड़ दो कैलाश जी, हमारे खुद के घर में मंदिर में दिगंबर मूर्ति है, और घर में जाके दिगंबराओं की मूर्तियां एडी टेढ़ी ला कर मिलती है ना, मूर्ति मोहल्ला में जाओ तो ये दिगंबर मूर्तियां तो मिलेंगी बहुत कम, इसे हजार गुणी तो वैसी मूर्तियां मिलेंगी कि नहीं, गंदी गंदी मूर्तियां। और आज सब बड़े नाम कहलाने वाले आदमियों के घरों में सब में मिलेंगी, पहले तो इस दुनिया में एक हुकुमचंद सेठ था, मैं तो जब 14-15 वर्ष का रहा हूंगा तब जाके देखी पहली दफे, मेरे मामा रहते थे, मेरे मामा के घर गया था इंदौर, तो सब दिखाने ले गए इंदौर घुमाने, तो वो इंद्र भवन भी दिखाने ले गए, तो उसे देखकर मैं इतना एलर्जिक हो गया था हुकुमचंद सेठ से क्या कि आप कल्पना नहीं कर सकते थे कि जब उनका स्वर्गवास हुआ तब मैं 20-25 वर्ष का रहा हूंगा अशोकनगर में था, तो सब शोक सभा रखी गई हमारे अशोकनगर में, तो मैंने अपने भाषण में कहा क्या कर रहे हो, उस सटोरियों की शोक सभा मना रहे हो, जिसने इंद्र भवन में वैराग्य भवन बनाया और देश मूर्तियां अभी भी लग रही हैं, आज भी जी देखी क्या नहीं देखी है, कपड़ा लटक दिए, और सब ब्रह्मचारी वही रहते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम स्थाप का आश्रम उनके बीच में लगी, यानी मेरे हृदय में कभी सारा समाज उनकी प्रशंसा करता था क्या, लेकिन मेरे मुख से कभी शायद ही प्रशंसा के शब्द निकले हों कि ये क्या है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इनसे हम नहीं बिगड़े हैं, हम पहले बिगड़े तब ये आई हैं, ये तो जड़ है, ये पहले थोड़ी आ गई थी, क्यों? ये घर में गंदे गंदे फोटो हम लाए हैं, टीवी अपने आप नहीं खुलता है, वो चैनल कौन सा चलाना है वो हम खोलते हैं। तो पहले हम बिगड़े, फिर हम बिगड़े, हमने उसे खोला, उसने फिर हमें खोला, दो ही तरफ से है। इसने हमें बिगाड़ा, ये भी सत्य है, और हम बिगड़े तब ये चीजें हमारे चारों तरफ हो गई, ये भी कम सत्य नहीं है। कहने का अर्थ है कि दूसरों पर टालने से क्या होगा है? पर द्रव्य तो सब निमित्त हैं, है? हम अपने बिगड़ने के जिम्मेवार पूरे हम हैं, ये इसमें लिखा है। देखो अभी अपना जो कलश चलने वाला है ना, 74वीं गाथा के बाद में, 74वीं गाथा और 75वीं गाथा के बीच की संधि बैठाने वाला कलश है। 74वीं गाथा में ये बताया गया है कि ये परद्रव्य से आश्रमों से निर्वृत्त हो गया। कैसे लिखा अंत में था ना, पंक्ति क्या थी, ज्ञानी निवृत्ति करे, ऐसा था ना, निवृत्त इनसे निवर्तन बुध करें, साधुय निवृत्त ये तेहिम, उनसे ज्ञानी निवृत्ति करता है। और 75वीं गाथा में ये बताई कि वो ज्ञानी कैसा होता है जो निवृत्ति करता है, तो वो कहते हैं इसमें लिखा ज्ञानी भूय, ज्ञानी होकर निवृत्ति करता है। तो वो कहते हैं तुमने क्या निवृत्ति कर ली, तो हम कैसे पहचाने कि ये ज्ञानी है? तो उसके जवाब में 75वीं गाथा आई है। तो ये 74वीं गाथा के समापन का भी कलश है और 75वीं गाथा का उत्थान का भी कलश भी है। इसमें निवर्तन की बात भी की है आश्रमों से, और वो निवर्तित हो गया तो उसमें कोई चिन्ह प्रकट हुए होंगे ना, पहचान के चिन्ह, हमने कैसे जाना कि ये ज्ञानी हो गया, ख्याल में है ना? तो उसका 75वीं गाथा में बताया है। छंद पढ़े भाई, है ना, सादुल विकीय संस्कृत का छंद नहीं है तुम्हारे पास किताब? एवं इस प्रकार से, इस प्रकार से माने क्या, जो 74वीं गाथा में जिसकी चर्चा की, क्या कहते हैं, परम द्रव्यान निवृत्तिम पराम विरचय, पर द्रव्य से उत्कृष्ट निवृत्ति लेकर, पर द्रव्य से उत्कृष्ट निवृत्ति लेकर। तो बात तो चौथे गुणस्थान की है, अब कह रहे उत्कृष्ट निवृत्ति लेकर। ये राग अभी जो राग भाव आश्रव है ना, वो दसवें गुण स्थान तक रहेगा, और अभी यहां पहले ही में उत्कृष्ट निवृत्ति कह रहे, तो वो कहते श्रद्धा की बात है ना, तो श्रद्धा में उसे पूरी तरह हे मान लिया, हो गई उत्कृष्ट निवृत्ति। अब तो वो जब तक रहेगा वो रहेगा, कहते हैं ना इतम विरचय संप्रति परा द्रव्यान निवृत्तिम पराम, पर द्रव्य से सर्वोत्कृष्ट निवृत्ति लेकर, और स्वम विज्ञान घन स्वभाव, अपना विज्ञान घन स्वभाव में एकदम अंदर से प्रकट हो गया। यानी वो कह रहे जो विज्ञान घन होता जाता है त्यों त्यों पर द्रव्य से निवृत्ति होती जाती है। तो वो कहते वहां पर द्रव्य से उत्कृष्ट निवृत्ति ली, वो यहां विज्ञान घन स्वभाव भगवान आत्मा दृष्टि में प्रकट हो गया। तो इससे क्या हुआ कि शुरू शुरू में कहा था जब तक एक कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रहेगी तब तक अज्ञान रहेगा और तब तक कर्म का बंध होगा। तो कहते हैं अज्ञान उत्थित कर्ति कर्म कलनात, अज्ञान से उत्पन्न हुई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति। कौन से अज्ञान से कहला चाहिए कि आश्रव और आत्मा के एकत्व का अज्ञान, मैं रागादि भाव का करता हूं प्रागादि भाव है आश्रव और आत्मा है कर्ता, इसका नाम है अज्ञान। मैं करता हूं कर्म का और कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व तो अधर्म। क्या तो कहते हैं अज्ञानोत्थित कर्ति कर्म कलनात्, अज्ञान से उत्पन्न हुई जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति थी वो नष्ट हो गई। क्लेश उससे उत्पन्न होने वाले जो क्लेश थे दुख, उनसे आत्मा निर्वृत्त हो गया। निर्वृत्त सन ज्ञानी भूत और ज्ञानी हो गया। ज्ञानी होता हुआ ये तस्तकास्ति जगतः साक्षी पुराणा पुमान, पुमान माने है आत्मा, पुरुष माने भी आत्मा होता है, पुमान माने भी पुरुष होता है। यह भगवान आत्मा कैसा है? पुराण पुराना पुराना भाई कोई पुराना सुन, पुराण माने पुराना, इन्हें पुराण बोलते ना, ये समय ये अपना आदि पुराण, ये भी पुराण माने पुराने लोगों की कहानी, सो पुराण बिल्कुल ऐसा ही है, आश्चर्य नहीं है। प्राकृत में ना को ना हो जाता है, नमो का नमो हो जाता है ना, तो वो कहते हैं कि पुराण पुरुषों, पुराण पुरुष माने जो हमारे प्राचीनतम पुरुष हैं उनकी कथा जिसमें हो उन्हें पुराण बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा पुराना कौन है? कि भगवान आत्मा अनादियत, ऐसा अत्यंत पुराना ये भगवान आत्मा जगत का साक्षी होकर के चकास्ती, बस जगत का ज्ञाता दृष्टा होकर के और चारों तरफ एकदम प्रकाशमान हो गया। ये जगत साक्षी लिखा ना इसमें, एक जगह और आता है जगत साक्षी, आता ना भगवान महावीर सत्र जगत साक्षी। और अगली गाथा की टीका में शांति जी आप पढ़ाते हैं ना, उसमें इस बात का खुलासा किया है। क्या खुलासा किया है टीका में? कि आत्मा जो है ना, तो जो गाथा पढ़ उतना धैर्य रख लें कि पहले बता देता हूं कि कर्म नो कर्म इनका जब तक मैं करता हूं भोगता हूं ऐसी मान्यता रहती है तब तक अज्ञानी रहता है, और एक इनका मैं करता भोगता नहीं हूं ऐसी मान्यता होती है तो आत्मा ज्ञानी हो जाता है ना। तो वो कहते हैं कि कर्ता नहीं रहता है तो क्या रहता है? तो ज्ञाता रहता है, यही तो कहेंगे ना, तो साक्षी रहती है। और उसने टीका में लिखा है कि वो पद्रव्य की जो परिणति होती है उस क्रिया का कर्ता तो नहीं है, लेकिन उसको जो जानने रूप ज्ञान की परिणति है उसका कर्ता है, ये सिद्ध किया है टीका में। जिस समय साल पढ़ते हो ना शांति जी से, उनके ख्याल में आया होगा कि नहीं, पढ़ के बताऊं? देखो फिर भी बाद में तो अपने आएगा अपने पास समय पे। पेज नंबर 149 पे तीसरा पैरा हिंदी में देखो, आत्म द्रव्य स्वतंत्र व्यापक होने से आत्म परिणाम का अर्थात पुद्गल के परिणाम के ज्ञान का कर्ता है, और पुद्गल परिणाम का ज्ञान उसका व्यापक, उस व्यापक का व्याप होने से उसका कर्म है। माने वो पुद्गल कर्म कर्म नहीं है, उस पुद्गल कर्म का ज्ञान कर्म है, माने उसके ज्ञातापने की स्थापना की, ये जगत साक्षी है। देखो मैं ये कहता हूं कि अभी बीच में एक अपने धारा चली थी कि जैसे कि मैं परद्रव्य मैं नहीं हूं, परद्रव्य मेरा नहीं है, परद्रव्य का मैं करता भोगता नहीं, ऐसा परद्रव्य का मैं ज्ञाता नहीं हूं, बीमारी चली थी ना ये बहुत चली है? अभी भी उसके कीटाणु बहुत लोगों में विद्यमान है ना। तो उसमें इतना कितना स्पष्ट है कि उसके ज्ञान का तो ज्ञाता सिद्ध किया, वो ज्ञान क्रिया का कर्म है और भगवान आत्मा उसका कर्ता है, ये पद तरणी गाथा ने सिद्ध किया। क्यों? और वो उसका कर्म है, वो उसकी परिणति है। माने ज्ञान के कर्तृत्व का निषेध नहीं है, इस चार प्रकार के जो संबंध है वो ज्ञान क्रिया के साथ नहीं है, पर को जानने का निषेध नहीं है, जानन क्रिया, तो क्योंकि वो पर का हो गया ना, पर का हो गया ना, सब कहां हुआ, वो जो जानन क्रिया है वो पर की थोड़ी है, वो तो तेरी है, पर तो उसके जानने में आया है, वो तो गे रूप निमित्त है। हमने ऐसा कह दिया कि जो जो हमारा गे रूप निमित्त था उस गे को ही अपनी ज्ञान परिणति सौंप दी, क्योंकि वो तो परिणति हमारी थी प्योर, और वो विभाग नहीं था, क्योंकि स्वपर प्रकाशक शक्ति है तो वो उसका स्वभाव था। उसको जानना आत्मा का वो स्वभाव है, विभाग नहीं है, ख्याल नहीं है ना। इसमें स्थापना की है उसकी, जब हम टीका पढ़ेंगे कल तो उस टीका में बहुत अच्छी तरह से विस्तार से ये बात आएगी कि वो क्या कहते हैं कि जो वहां पर कर्म में हुआ, जैसे अपने अपने मुख राजदेश परिणाम हुए, उसे ज्ञान अवरण आदि कर्म बने, और कर्म का बंधन अपन को हुआ, तो अपन काय के करता है। तो तीन चीजें हुई वहां, एक तो वो कारमान वगैरह कर्म रूप परिणमित हुई, एक काम हुआ, दूसरे हमारे आत्मा में मोह राग द्वेष के परिणाम हुए, और तीसरा वो हमारी ज्ञान का गेय बना, मन जानन क्रिया हुआ। तीन काम हुए ना, राग ज्ञान और वो कर्म रूप पुद्गल का प्रणमन। तो इन गाथाओं में इस प्रकरण में वो पर का करता तो आत्मा किसी कीमत पर है ही नहीं, क्योंकि दो द्रव्यों के बीच में बद्ध की दीवार है अत्यंत अभाव की। अब उसे करने का जो राग हुआ, वो राग क्योंकि अपना परिणमन है तो उसका कर्ता कदाचित अशुद्ध निश्चय नए से आत्मा को कहीं कहीं कहा है या नहीं, तो क्या का कि उसका जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान का कर्ता आत्मा है, चाहे आत्मा का ज्ञान होता और चाहे उसका ज्ञान हुआ, दोनों का कर्ता आत्मा है। हमको ऐसा लगता है कि आत्मा का ज्ञान होता तो उसका कर्ता बनना तो हमारा सौभाग्य था, और उसका ज्ञान हुआ तो उसका कर्ता बनना हमारा दुर्भाग्य है। तो ये हमने आत्मा के स्वभाव का अपमान किया, माने स्वभाव को दुर्भाग्य बना दिया ना, वो तो ज्ञान का परिणमन है। और जो 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 ज्ञान के पर्याय की योग्यता होगी वो गे उसके ज्ञान में आए गई, और अपन जब क्रमत पर्याय पर जाते हैं तो वो अपने परीक्षा मुख का सूत्र है ना, फिर संरक्षण अनादिकाल पहले से कौन से ज्ञान पर्याय का गे कौन सा पदार्थ होगा ये पहले से ही नक्की है, वो हटाना तुम्हारे हाथ में भी नहीं है और तुम उसे अपराध मान रहे हो, यानी जो अपराध नहीं है उसे तुम अपराध मान रहे हो। सारी जिंदगी हमारे माँ बाप ने हमको ये ट्रेनिंग दी थी कि किसी की माँ बहन को, किसी की लड़की को बिल्कुल देखना नहीं, छेड़ना नहीं, उसको स्पर्श नहीं करना, उसे मजाक नहीं करना, ऐसी सारी ट्रेनिंग दी ना सारी जिंदगी भर, तो हमारे दिमाग में वो बात बहुत गहराई से जम गई। अब हमारी शादी भी हो गई, अब वो भी किसी की बहन है, अब उसने जब देखा ही नहीं तो बात ही नहीं करे, क्यों? तो वो वहां अपराध हो जाएगा, क्यों? उसके लिए डॉक्टरों के पास ले जाएंगे, इसका इलाज कराएंगे, क्यों? मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास ले जाएंगे, पंडित जी के पास भी जाएंगे, समझाओ तो जरा ये क्यों? सारी जिंदगी आपने समझाई कि किसी की बहन बेटी के नहीं है ना, जी किसी की बहन है किसी की बेटी है, मैं क्या करूं, पहले इसी किसी की बहन बेटी मिटाओ वो जैसा अपराध है ऐसा ही अपराध यहां हुआ है। क्या कि वो कि तुम जान नहीं, मतलब उसको करना नहीं, राग नहीं करना, अब वहां से जान नहीं, नहीं कादर कह दिया होगा जिनवाणी में, इसलिए कि तुम जानता हो राग करता है, राग किए बिना रहता नहीं है, हैं? तो वो उसमें अपराध बोध होने लगा, अपनी पत्नी की तरफ देखने उससे बात करने में भी हमें अपराध बोध होने लगा। ये अपराध बोध है, ये मिथ्यात्व है, वो जानना मिथ्यात्व नहीं है, वो तो स्वभाव है। पर हमने कहा जानने का राग अपराध है, दोष है, तो वो राग का निषेध है, ख्याल में, वो जानने का निषेध नहीं है, क्या? हमने कहा देख तुम किसी की तरफ नहीं देखेगा, नहीं जानेगा, तो देखने का राग है वो नहीं करेगा, लेकिन सारा रास्ते में आंख खोल के चलूं कि नहीं चलूं, और नहीं चलूं तो एक्सीडेंट हो जाएगा कि नहीं। देख तू मंदिर में जाएगा तो किसी की बहन बेटी को नहीं देखेगा, तो आंखें बंद करके जाए क्या हो, नहीं देखेगा तो टकराए बिना कैसे रहेगा। ये तो देखना ही पड़ेगा कि मैं टकरा नहीं जाऊं, तो वो चीज दिखेगी नहीं कि किससे नहीं टकराना है, तो बचेगा कैसे मुझे बताओ। अब इतना भेद विज्ञान भी समझ में नहीं आता है कि जो कह रहे हैं देखना ही नहीं उसका अर्थ क्या है, क्या देखेंगे नहीं तो बचेगा कैसे, क्या नहीं देखना बोलो, तो क्या नहीं देखना वो ज्ञान का ज्ञेय बनेगा कि नहीं। इसलिए इस कलश में लिखा है, देखो इस प्रकार छंद पढ़ो, ये बहुत बढ़िया छंद है, सवैया एक तैयार है। इसमें अक्षर साक्षर सा पद्यानुवाद है, बहुत मुश्किल होती है कि पूरी की पूरी बात आ जाए और छंद में बांध देना। देखो इस प्रकार और इतनी सरलता से, इस प्रकार भिन्नता जान विभाव भाव की, इस भगवान आत्मा से विभाव भाव की भिन्नता इस प्रकार जानी। किस प्रकार जानी कि आत्मा नित्य है और आश्रव अनित्य है, आत्मा ध्रुव है और आश्रव अध्रुव है, आत्मा शरणभूत है और आश्रव अशरण है, आत्मा सुख स्वरूप है और आश्रव दुख स्वरूप है, और आत्मा दुख का सुख का कारण है और आश्रव दुख के कारण है। इस प्रकार जानता, इस प्रकार में इतनी बात लगाई, ये विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, इस प्रकार में इतना लगा लो पीछे से, क्योंकि इस प्रकार पीछे को कवर करता है। विभाव भाव की भिन्नता जानी तो कर्तृत्व का अहम विलीयमान हो रहा, विलायमान बोल रहे थे तुम लोग, क्योंकि कुछ लोग हम आधा इसमें देखते हैं और आधा अपने मन से बोलते हैं, अर्थ एक ही है। कर्तृत्व का अहम विलीयमान हो रहा, देखो कर्तृत्व का अहम श्रद्धा का दोष, कर्ता का विकल्प आ सकता है, जानने का विकल्प आता है ना, ऐसा करने का भी विकल्प आता है, प्रवचन करने का विकल्प आता है कि नहीं आता है, यहां किताब पढ़ने का विकल्प आता है कि नहीं आता है। कर्तृत्व का अहम विलीयमान हो रहा, निज विज्ञान घन भाव गजारूढ़ हो, विज्ञान घन जो है आत्मा है वो है गज, उस पर भगवान आत्मा आरूढ़ हो गया, विज्ञान घन स्वभाव के पर गजारूढ़ हो, निज भगवान शोभायमान हो रहा है, एक गजरस चल रहा है समझ लो, हर हाथियों की बोली लग करके हर इंद्रों का जुलूस निकलता है ना हाथियों पर बैठ बैठ के, गजारूढ़ होना, ऐसा भगवान आत्मा गजारूढ़ हुआ है, मैंने सर्वोत्कृष्ट पद को प्राप्त हुआ है। जगत का साक्षी या पुराण पुरुष अपने स्वभाव में विकासमान हो रहा, अपना स्वभाव इसका विकसित होना शुरू हुआ है। अहो सदवंत सद ज्ञानवंत दृष्टिवंत सम्य दर्शन सहित सम्य ज्ञान सहित, यह पुमान मन यही भगवान आत्मा जगमग ज्योतिमय प्रकाशमान हो रहा। तो इसमें दो बातें आ गई ना, कि ऊपर तो आ गया कि उनसे अलग होकर भिन्नता जानी, विभाव भाव की भिन्नता जानी तो परा निवृत्ति, और दूसरा ज्ञानी हो गया, ज्ञानी भूततः चकास्ति, ऐसा भगवान आत्मा। तब अगली गाथा में ये प्रश्न खड़ा किया कि ऐसे हम कैसे जाने कि ये ज्ञानी हो गया। देखो भी जरा विचार करो गंभीरता से, अभी अपने यहां सब बैठे हैं, और यहीं बैठे बैठे और किसी को समन दर्शन हो जाए। इसी कोई बहुत बड़ी ऐसी अद्भुत बात नहीं कह रहा हूं, कोई कल्पना लोक की बात नहीं है। जब जब भी किसी को होता है ना, तो ऐसे ही किसी बैठे बैठी अवस्था में तो होता है ना, क्यों? और वो ऐसे उत्कृष्ट काल में नहीं होगा तो क्या रोटी खाते होगा, चलते चलते होगा, घूमते फिरते होगा, सोते सोते होगा? वो तो अत्यंत जागृत अवस्था में ही तो होगा ना। तो यहां आपकी अत्यंत जागृत अवस्था है, तो जब होगा ऐसा ही होगा, इसलिए कोई ऐसे आश्चर्य की बात नहीं है। सुनिए ना, यदि हो जाए यहां सम्यक दर्शन, तो अब इस प्रश्न शिष्य का ये है, इसी का प्रश्न है कि इसे सम्यक दर्शन हो गया ये कैसे पता चलेगा? उसे तो सींग तो निकलेंगे नहीं, मैं बोलता हूं ना, एकदम सींग निकल आएंगे तो हम जान जाएंगे कि समझती है समझती है। कोई ऐसा चिन्ह प्रकट नहीं होगा कि हम बाहर से देख के ये फिल्म बना करके और इसमें से बता देने के ये ज्ञानी हो गया। बिल्कुल जैसे जैसे अभी है बाद में भी देखेगा है? तो क्या चिन्ह प्रकट हो जाएगा? तो उन्होंने चिन्ह प्रत्युत्तर में गाथा में बताया कि कम्मस्य परिणामम नो कम्मस्य तहैव परिणामम न करे क्या जो जाने सो हवदी रानी है ना, ये ना करे ये मादा जो जाने सो हवदी रानी, कि ये चिन्ह प्रकट होगा कि कर्म का परिणाम और नो कर्म का परिणाम मैं करता नहीं हूं मात्र जानता हूं। जो जाने सो हवई रानी, फिलहाल जी फिर देखो किसको जानता है तो ज्ञानी होता है, आत्मा को लिखा है। उस कर्म के परिणाम को करता नहीं है मात्र जानता, तो उसी को जानने की बात है ना। वो उसे नहीं करता है इसे जानता है, उसे नहीं करता है तो उसके बदले में इसे करता है आएगा। यदि इसे कहेंगे इसे जानता है तो उसे नहीं जानता है आएगा। ऐसा क्यों आ रहा है यहां, समझ गए ना आपके? वो कहते हैं वो जान, उसको जो जानता है वो ज्ञानी है। वे ज्ञानी की परिभाषा में उसे जानने वाली शब्द लगाई है, समझे ना ये? तो गाथा में देखो आप उसका अर्थ पढ़ो। कर्म के परिणाम को नो कर्म के जो आत्मा इस कर्म के परिणाम को नो कर्म के परिणाम को करता नहीं है मात्र जानता है वह ज्ञानी है। देखा ना, मतलब कुंद कुंद की मूल गाथा में है। वो बात मैं नहीं कहता हूं कि वो बात कि भाई अपना अपने को जानना ज्यादा महत्वपूर्ण है पर को नहीं, ये कहीं है ही नहीं जिनवाणी में, ऐसा मैं नहीं कहता हूं। कम से कम इस गाथा में तो नहीं है, हर गाथा में वो बात हम कहेंगे कहीं चलेगा, इस गाथा में नहीं है। और उस गाथा में कहीं भी है तो उपदेश में ऐसी बात है कि भाई तूने सारा जान दुनिया को जाना लेकिन जानने वाले को नहीं जाना, आता है उपदेश में है? सारी दुनिया को जाना लेकिन जानने वाले को नहीं जाना तो संसार नहीं घटा। वो तो जानने वाले को नहीं जाना और सारी दुनिया को जाना तो ये अपराध बताया, तो सारी दुनिया को जाना ये अपराध नहीं है, वो तो आत्मा को नहीं जाना ये अपराध है ना। यदि वो आत्मा को भी जाना होता और फिर सारी दुनिया को जाना होता तो अपराध नहीं होता, केवल ज्ञान होता। अरहंत बनकर सर्वज्ञ बनकर तुम पूजते उनके अष्टदेव से पूजन की जाती, क्यों? अपने आत्मा को जानने के साथ सारी दुनिया को जानने वाले तो अरहंत भगवान हैं, सिद्ध भगवान हैं, उनकी तो हम अष्टद्रव्य से पूजन करते हैं। वो तो आत्मा को नहीं जाने और सारे जगत को जाने वो उसकी निंदा थी, तो वो नहीं आत्मा को नहीं जानने की निंदा थी। ऐसी गाथा आती है इसमें कि जो एक को जान प्रतिसार में है ना, जो एक को जानता है वो सबको जानता है और जो एक को नहीं जानता है वो सबको नहीं जानता, आती क्या नहीं आता? क्या अर्थ है इसका बोलो? दो अर्थ हैं बहुत मार्मिक, कि एक को पूरे द्रिवगुण पर्याय से जाने, तो अनादि ऐसे लेके अनंत काल तक की सब पर्यायों को जानेगा ना, और उसके द्रव्य को जानेगा और गुण को जानेगा। तो इतनी बारीक उसकी दृष्टि हो गई कि एक एक समय की पर्याय और एक एक प्रदेश को उसने जान लिया। तो वो फिर जब रूमाल को जान लिया तो दूसरे रूमाल को क्यों नहीं जान पाएगा? फिर वो अनंत पदार्थों को भी ऐसा ही, वैसे ही तो सब है ना, त्रिगुण पर्याय से सबको जान लेगा। युग को जानता है, वो सबको जानता है, ख्याल में है ना। दूसरा ये अर्थ है कि एक अपने आत्मा को जानेगा तो उसकी एक एक समय की पर्याय को जानेगा कि नहीं जानेगा, तो उसकी केवल ज्ञान पर्याय को जानेगा कि नहीं जानेगा, तो केवल ज्ञान में क्या क्या झलकता है ये जानेगा कि नहीं जानेगा, तो सब द्रव्य झलकते हैं तो सब द्रव्य जानने में आ गए कि नहीं आ गए। ऐसा होता ही नहीं है कि हम पर को नहीं जानेंगे और अकेले को जान लेंगे। ऐसा आज तक एक भी जीव को हुआ हो तो बताओ क्या? ऐसा आज तक नहीं हुआ। अरहंत सिद्ध में सब स्वपर प्रकाशक वाले हैं, उनके ज्ञान पर्याय भी स्वपर प्रकाशक रूप से प्रकट हुई है। वो तो ये कहते जगत का साक्षी भूत, साक्षी तू साक्षी बन। साक्षी माने अदालत में जाते हैं ना अपन, गवाही देते हैं, तो उसे साक्षी क्यों बोलते हैं? साक्षी का मतलब होता है वितरागी। साक्षी का मतलब वितरागी कैसे हो गया? वो देखो, जब कोई केस की हत्या का केस होता है ना, तो तूने देखा, यदि उसने देखा भी है और फिर कहें कि ये जो मरा है ये उसका भाई है, तो उसकी गवाही नहीं लगती। कहते इसने नहीं मारा, तो जिसका भाई है तो नहीं लगती। वो आदमी उन दोनों से संबंधित नहीं होना चाहिए और उसने अपनी आंख से देखा होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए और उसको कोई राज द्वेष पक्षपात उसकी दृष्टि में नहीं होना चाहिए, तो उसको गवाही के रूप में पेश किया जाता है। भगवान जैसा गवाह तो कोई दूसरा है नहीं, क्योंकि उनको रंतमात्र ही राग द्वेष नहीं है और सब लोकालोक को जानते हैं। तो जगत के साक्षी, समझ गए ना आप, वे साक्षी हैं। माने उस साक्षी के आगे वे बिल्कुल बढ़ते नहीं है। तो अपने नयों का वर्णन है ना, उसमें आते हैं तीन नए आते हैं, वो कुमार को करने, कुमार का चक्का चला रहा है, कुमार वो करता और उसको दूर खड़ा हुआ एक आदमी देख रहा है, एक विद्यार्थी को अध्यापक पढ़ा रहा है वो, और एक दूर से उसे देखने वाला बिल्कुल वितराग भाव से, बस कदम ना उसका वो बच्चा है ना वे गुरुजी उसके हैं, कोई उसके नहीं है, क्यों? और साक्षी भाव से देख रहा है। साक्षी भाव का मतलब समझिए ना, उसमें कोई पक्षपात नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है, कोई बिल्कुल विकार नहीं है, ख्याल में है ना है? तो जब अपन विद्यार्थियों में झगड़ा हो जाता है ना, फिर वो कहते इसने देखा कि हाँ देखा साहब, इसने इसे पीटा था, तो वो कहता है साहब ये इसका दोस्त है इसलिए ऐसा कह रहा है, और इतना सिद्ध हो जाए कि दोस्त है तो गवाही बेकार हो जाती है, शांति जी के सामने भी हो जाती है, नहीं हो जाती है? तो दोस्त तो वो है जो राग द्वेष करता है। तो इस कर्ताक्रम अधिकार में, पूरे जीवाजीव अधिकार में, यहां सब यही सिद्ध किया है। 19वीं गाथा में अज्ञानी की परिभाषा दी है और 75वीं गाथा में ज्ञानी की परिभाषा दी है, तो कहां 19 और कहां 75? जोड़ जोड़ के लिए अब वहां क्या दी है, कर्म के परिणाम को कम्मे नो कम मम्मी अहमित कह कम च कम्मेणो कम मम जाए सा खलु बुद्धि अपरिबुद्धो हबदी तावे। कि कर्म के परिणाम को नो कर्म में और नो कर्म में, ये मैं हूं ये मेरे हैं, ऐसी बुद्धि जिसकी है वो अज्ञानी है। और यहां कहते हैं कि कर्म का परिणाम और नो कर्म के परिणाम को जो करता नहीं है मात्र जानता है वो ज्ञानी है। तो उलट गया मामला ज्ञानी से अज्ञानी में, लेकिन बात फर्क पड़ गई। वहां तो कहा था कि ये मेरे हैं और मैं इनका हूं, इसको अज्ञान कहा था, और ये कहा मैं इसका कर्ता हूं। ये अंतर अधिकार का है, ये कर्ता कर्म अधिकार है इसलिए कर्ता की बात कर रहे हैं, और वह जीवा जीवा अधिकार था इसलिए एकत्वमत्व की बात कर रहे थे। एक आदमी कहता है ना ये मेरी है, मैंने खरीदी है, मैं इसका मालिक हूं, और दूसरा आदमी कहता है मैंने बनाया है, मैंने ये सारा काम किया है, किया तो मैं नहीं है। दो तरह का ज्ञान है ना, एक एकत्व और स्वामित्व संबंधी, एक कर्तृत्व और भोक्तृत्व संबंधी। तो यहां इतनी बात बदल गई है ज्ञानी में कि वो कहता है कि मैं इसका कर्ता नहीं हूं, कर्ता का निषेध है, जानने का निषेध नहीं है। मैं जो जान दी सो हबजी नानी, जो इनको कर्ता नहीं है मात्र जानता है वो ही वास्तव में ज्ञानी है। अब इस टीका में वो व्यापक व्यापक भाव की अपेक्षा से घटित करके, क्योंकि जिनमें व्यापक व्यापक भाव होता है उन्हीं में कर्ता कर्म बनता है, वो न्याय की भाषा में सिद्ध करके बताएंगे कि कैसे ये कर्ता नहीं है। वो कर्ता है तो काय का कर्ता है, वैसे मैंने बता तो दिया ही है आज, लेकिन कल उसे न्याय की भाषा में सिद्ध करेंगे। क्या बताया है बोल, बोल। यहां जो समझा ना तू काय का कर्ता है भगवान आदम, तू बता दे। हाँ। उसको जान रहा है, उसको जानने वाला जो ज्ञान पर्याय पैदा हुई है ज्ञानी उस ज्ञान भाव का करता है। तो इस तरह जानने की तो यहां स्थापना की और करने की और भोगने का निषेध किया इस गाथा में। अब इस गाथा के अर्थ करते वक्त हम जानने का भी निषेध कर दें तो वो सत्य है कि नहीं है, लेकिन इस गाथा का वो अर्थ नहीं है, ये तो परम सत्य है। ये सुमित जी जब यहां आते थे लालू भाई, और जब भी ये बात चलती थी तो हम घर जाते थे ना, फिर हमारे घर भी जाके बैठते थे, तो मैं उनसे कहता था कि भाई यहां तो ये बात कहां है, यहां ये बात कहां है। तो जो मैंने कहा बात तो सत्य है ना, हाँ बात तो सत्य है लेकिन यहां नहीं है, हाँ नहीं हो लेकिन है तो सत्य, ऐसे 100 दफे हुआ होगा, 100 दफे हुआ होगा मालती में, ऐसा नहीं है। लोग कह रहे आपने तब क्यों नहीं की, कब नहीं कही, एक दिन भी नहीं रुका मैं तो, अकेले में कही, चर्चा में कही, प्रवचन में कही, उनसे सब बात समझे, ऐसा नहीं है नहीं कही। मैं कह वो ठीक है, वो बात तो गलत नहीं, बात तो गलत नहीं, बात सही है, लेकिन इस गाथा में ये नहीं बता रहे यहां पर। जैसे तुझे गाथा प्रवचन सार की बहुत हुई, क्या उसने कहा बिल्कुल सर्व था बंद करके, सर्व था बंद करके, क्योंकि ये दूसरी चक्षु को भी सर्व से ही बंद करके लिखा ना, दृढ़ता से मैं की चक्षु को सर्वथा बंद करके नीचे की लाइन में तो लिखा है, इसमें तो नहीं है, इसमें तो नहीं है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि ये समय सार है भैया, ये कच्चा पारा है, इसको ऐसा नहीं चलेगा कि कहीं भी कुछ भी, मैं रोजीना पूरा समय सार थोड़ी सुना दे। जो गाथा का अर्थ कर रहे हैं उस गाथा में जो बात है उस बात को हमें बारीकी से समझना पड़ेगा। यहाँ कर्तृत्व से निवृत्ति दिला रहे हैं, कर्तृत्व का बोझा तेरे माथे से हटा रहे हैं, जानने का बोझा नहीं हटा रहे हैं, जानना बोझा नहीं है, जानना तो हमारी स्वभाव है, समझे ना, ये गाथा में बताया।